रजनी की विदाई के बाद ईशान सारा दिन घर से बाहर रहा। रात को एक शादी का ऑर्डर बुक था, इसलिए घर आते आते उसे रात के 2 बज गए थे। जब उसने घर में कदम रखा तो कशिश उसे बाहर लगी चौकी पर सिकुड़कर लेटी हुई दिखी। घर से अधिकांश मेहमान जा चुके थे, बस कुछ दूर के रिश्तेदार रह गए थे जिन्हें दूर जाना था। सर्दी चरम पर थी, रात का वक्त और खुला आंगन, सर्द हवाएं जिस्म में सिरहन पैदा कर रही थीं। कशिश उसी कड़कती ठंड में एक शॉल ओढ़े बिल्कुल लड्डू जैसे सिकुड़कर लेटी हुई थी। घुटनों को मोड़कर सीने से लगा लिया था और अपनी बाहों को पैरों पर लपेटते हुए उनके बीच अपना चेहरा छुपा लिया था। नींद में भी ठंड से कांप रही थी वो। उसे इस हालत में वहां सोया देखकर ईशान की भौहें सिकुड़ गईं, माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। चेहरे पर विचलित भाव लिए उसने कशिश की ओर कदम बढ़ाए। काशी, ईशान ने जैसे ही उसके कंधे को हिलाते हुए पुकारा, कशिश ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दीं। नींद से भरी वे सुर्ख नशीली आंखें सीधे ईशान के चेहरे पर पड़ीं। हम्म, ईशान ने हामी भरी। कशिश उठकर बैठ गई। ठंड से जमी अपनी नाक को उसने अपनी हथेली से सहलाया और गुलाबी रंग में रंगे गालों को नाराजगी से फुला लिया। कितनी देर लगा दी आपने आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कैसे बच्चों जैसी नाराजगी जता ली थी। ईशान को उसकी हालत पर तरस आया और साथ ही शब्दों में कुछ नाराजगी थी फूलने लगी। बताया तो था तुम्हें, शादी में गया था तो देर तो होनी ही थी ना, पर तुम यहाँ लेट कर क्या कर रही थी, कमरे में क्यों नहीं गई। कितनी ठंड है, देखो कैसे तुम्हारा पूरा बदन बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया है। मैं आपका इंतजार कर रही थी, अगर कमरे में चली जाती तो रजाई की गर्माहट पाकर सो जाती, फिर आपका इंतजार कैसे करती, इसलिए यहाँ बैठ गई थी, पर पता नहीं कब आपकी राह तकते तकते ही मेरी आंख लग गई। कशिश ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया। उस मासूम सी बच्ची पर ईशान को गुस्सा भी आया कि कैसे खुद को परेशान करती रहती है, और प्यार भी कि कितनी परवाह रहती है उसे उसकी। इन्हीं सब एहसासों में उलझा ईशान उसे कुछ कह ना सका, जबकि चाहता तो था कि अच्छे से डांट लगाए उसे। कशिश ने उसे खामोश देखा तो चौकी पर से उतरते हुए बोली, आप चलिए कमरे में, मैं खाना लेकर आती हूँ आपका। कशिश ने जैसे ही वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, ईशान ने उसकी कलाई थामकर उसे रोक लिया। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? खाया था थोड़ा सा, अब आपके साथ पेट भरकर खाऊंगी। कशिश ने क्यूट सी शक्ल बनाकर उसे देखा, जानती थी अब डांट पड़ने वाली है उसे ईशान से, पर उसकी उम्मीद के विपरीत ईशान ने बस अफसोस से सर हिलाकर बोला, खाना लेकर कमरे में आओ, मैं तुम्हारे बर्फ जैसे ठंडे शरीर को गर्माहट देने के कुछ इंतजाम करता हूँ। कशिश ने बत्ती से चमकाई और खिलखिलाते हुए रसोई में चली गई। कुछ देर बाद दोनों कमरे में साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उनके सामने ही मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाले तसले में आग जल रही थी, जिससे दोनों को ही सर्दी से राहत मिल गई थी। खाने के बाद दोनों सोने लेट गए। कमरा भी अब कुछ गर्म हो गया था। दिन भर और पिछले कई दिनों की शादी की थकान के कारण जल्दी ही वे नींद की आवोश में समा गए। देखते ही देखते रजनी की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। घर में फैला काम समेटने और जिम्मेदारियां निभाने में वो 1 हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया था। सब रिश्तेदार जा चुके थे, अब घर में बस गिने चुने वही लोग बचे थे जो यहाँ रहते थे। कशिश इन बीते दिनों कुछ गुमसुम, उदास और चुपचाप सी थी। ईशान से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, पर जिम्मेदारियों और काम के बीच ईशान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शादी की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। ईशान दोपहर में टेंट वाले, ढोल वाले, दुकानदार सबका हिसाब करके वापस लौटा तो दरवाजा शुभिका ने खोला। अंदर आया तो शुभ्रा उसके लिए पानी ले आई। ईशान को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब से कशिश आई थी ये काम उसके लिए कशिश ही करती थी, बस बीच में जब वो नाराज हुई थी तब उसने ये काम त्याग दिया था। ईशान ने पानी का ग्लास लेते हुए निगाहें आसपास घुमाते हुए सवाल किया, शुभ्रा तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी कह रही थी कि दीदी से मिलने गई है, शुभ्रा ने झट से जवाब दिया। ईशान सोच में पड़ गया, कशिश मुझे बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाती, फिर आज जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, और अकेले कैसे चली गई, उसे तो ठीक से रास्ते तक याद नहीं। ईशान पहले कुछ उलझा, फिर सर हिलाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कमरे में बैठा ईशान कशिश का इंतजार कर रहा था। बीते दिनों वो भी काफी व्यस्त था तो कशिश से बात नहीं कर सका था, पर आज वक्त था तो बात करने का फैसला किया, लेकिन अब कशिश ही गायब थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए पर कशिश नहीं लौटी।